नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे कार्यक्रम को सुन करके पत्र लिखते हैं और अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। आप इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें और प्रभु आप सबकी निरंतर सहायता करते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन दिनों हम बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि शैतान का पुरुष जिसे हमने भजन 9 और 10 में देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 11 और 12 अध्याय से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए, आपके करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं। यद्यपि कि हम दुर्बल और कमजोर हैं, हमारे जीवन में कुछ भली और अच्छी बातें नहीं है, इसके बावजूद भी आप हम सबसे प्रेम करते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं। पिताजी आप उन सब की सहायता करें। आज आप अपने जीवित वचन के द्वारा एक एक से बोले और बातचीत करें, मुझसे बातचीत करें, हम सब से बातचीत करें। इस समय को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है धर्मी की परीक्षा। पिछले अध्ययन में हमने देखा शैतान का पुरुष और आज हम देखेंगे धर्मी की परीक्षा। यह दाऊद का एक अति उत्तम छोटा सा भजन है जो प्रधान बजाने वाले के लिए था। यह भजन किस परिस्थिति में लिखा गया है वह तो प्रकट नहीं किया गया है, परंतु स्पष्ट दिखाई देता है कि यह भजन दाऊद के जीवन में कष्टों और परीक्षाओं का परिणाम है। मैं जे स्टुअर्ट का एक विस्तृत संदर्भ देता हूं क्योंकि मेरे विचार में यह एक धर्म विज्ञान के युक्त विचारक से आया है। गायक अपने जीवन में संकटों से घिरा है और डरपोक और निराश मन के परामर्शदाता से भागकर सुरक्षा खोजने हेतु उसे सहर्ष विवश करेंगे, परंतु परमेश्वर में अटल विश्वास के कारण वह उनका सुझाव अस्वीकार करता है क्योंकि उसका विश्वास है कि यहोवा धर्मी राजा यद्यपि अपने भक्तों की परीक्षा लेता है उन्हें त्यागता नहीं है। धर्मी नहीं परंतु दुष्टों को डरने की आवश्यकता है। यह भजन इतना छोटा और अपने गुणों में ऐसा सामान्य है कि कहा नहीं जा सकता कि दाऊद के जीवन की कौन सी परिस्थितियों से संदर्भित है। अतः चुनाव करना शाऊल द्वारा उसका उत्पीड़न या उसके पुत्र अबशलोम के विद्रोह में से एक हो सकता है। डेलिटस अंतिम बात को स्वीकार करता है और पद एक का सुझाव अपने पहाड़ पर उड़ जा उन मित्रों का सुझाव है जो राजा को अलग हो जाने के लिए विवश कर रहे थे, जैसा उसने शाऊल के सताव के समय किया था। पहला शामुएल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 2 पद में जंगली बकरी की चट्टान में, तब यह पद 3 में अभिव्यक्त है। यदि नींवें ढा दी जाए इसका समर्थन करती हैं और उस समय संकेत देती हैं जब नियम अधिकरण अव्यवस्थित हो गया था। मैं यहाँ पर मुक्त विचारकों से सहमत होता हूँ। मेरे विचार में यह वह समय था जब दाऊद अबशलोम के कारण यरूशलेम छोड़कर चला गया था। तो आइए हम भजन संहिता 11 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। मेरे मित्रों, आज मनोवैज्ञानिक आपको यही सुझाव देंगे। वे आपसे कहेंगे कि आपको जो करना है वह यह है कि समस्याओं से दूर भागें, कहीं दूर जाकर आराम करें, अपनी परिस्थितियों से चिड़िया की नाई उड़कर दूर चले जाएं। मेरे मित्रों, भागने से समस्या का हल या अंत नहीं होता है। एक बार एक महिला अपने गृह संरक्षक से सब कुछ छोड़ देने की बात कह रही थी, तो उसके गृह संरक्षक ने कहा, आप किससे दूर चली जाना चाहती हैं? इस सुंदर घर से, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, अपने अच्छे पति से? आप चाहें कहीं भी चली जाएं, आपको जीवन गाड़ी खींचना ही होगी। आप अपने आप से दूर भाग नहीं सकती हैं, यह कैसा सत्य है। लोगों ने दाऊद से कहा, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, परंतु यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। जी हाँ, आज घंटों कार में चलना बहुत थका देता है। लोग हवाई जहाज में उड़ना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, परंतु संपूर्ण विश्व की यात्रा करने के बाद वह भी उनके लिए उबाऊ हो जाता है। आप हवा में उड़ते हैं और देखकर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। मेरे विचार में व्यस्त जीवन और नगर के कोलाहल से दूर चले जाना, विश्राम करना अच्छा है। अपनी समस्याओं से दूर, अपनी विषम परिस्थितियों से दूर चले जाना अच्छा है, तो यह एक अच्छा समाधान नहीं है। आपको डर कर नहीं भागना है। वे जो दाऊद को बाहर भाग जाने के लिए सुझाव देते थे, वे अबशालोम के कारण उसके जीवन के लिए भयभीत थे। उसका पुत्र अबशालोम उसकी हत्या करना चाहता था। भजन संहिता 11 उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। ध्यान दीजिए, अबशालोम के अनुयायी अवसर पाते ही दाऊद को घात करना अर्थात मार डालना चाहते थे। दोनों की प्रतिद्वंदियों के मन कड़वाहट से भरे थे। अबशालोम के आक्रमण करने पर दाऊद देश छोड़कर नहीं भागा था, वह केवल पीछे हटा था कि टोह लेकर फिर अपनी सेना के साथ अपने पुत्र पर आक्रमण करे। दाऊद ने अपने सेनापतियों को विशेष निर्देश दिए थे कि वे उसके पुत्र का ध्यान रखें, उसको कोई हानि न पहुंचाएं। वह उसे सुरक्षित पकड़ना चाहता था। अबशालोम ने अपने पिता और उसके साथियों से युद्ध करने की बड़ी भारी भूल की थी, क्योंकि वे युद्ध में अनुभवी थे और रणनीतियों में सिद्ध थे। दाऊद जंगलों और पहाड़ों में युद्ध करना जानता था, परंतु अबशालोम और उसके साथी उतने अनुभवी नहीं थे, और परिणाम यह हुआ कि अबशालोम हार गया। कड़वाहट अबशालोम में ही नहीं, दाऊद में भी थी। चाहे उसका मन कड़वाहट से मुक्त रहा हो, योआब ने अवसर पाते ही अबशालोम को भाले से मार दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कड़वाहट दोनों की ओर से थी। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दाऊद का दिल टूट गया। मेरे विचार में तो वह इस दुख से कभी उभर नहीं पाया था। जब अबशालोम ने यरूशलेम पर अधिकार किया था, तब दाऊद वहां से बाहर हो गया था। कानून और व्यवस्था वहां समाप्त हो गई थी और जीवन सच्चे परमेश्वर की आराधना का अंत हो गया था। भजन संहिता 11 उसके 3 में लिखा है, यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। जी हाँ, आज भी यह प्रश्न पूछने योग्य है। आज कदम कदम पर परमेश्वर के वचन के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। आज की नई नैतिकता एक ऐसा पाप है जिसका बाइबल ने आरंभ ही से विरोध किया है। अब समस्या यह है, धर्मी जन क्या करे। मैं बताता हूँ कि वह क्या करे। भजनकार की बात सुने। भजन संहिता 11 उसके 4 पद में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। परमेश्वर हम पर दृष्टि गड़ाए हुए है, वह हमें परख रहा है, वह हमें देख रहा है, और हमारा एकमात्र स्थान परमेश्वर ही है। जब हमारी नींवें ढा दी जाती हैं, तब हम धर्मियों के पास थामने के लिए परमेश्वर है। जी हाँ, अब्राहम इस स्थान पर आ गया था क्योंकि उसके लिए कहा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसका अर्थ है कि अब्राहम ने अपनी बाहें फैलाकर परमेश्वर को पकड़ लिया था, उसने परमेश्वर में विश्वास किया। आज का युग वह समय है जब हमें परमेश्वर में विश्वास करना और उसे थाम लेना है। मेरे मित्रों, हमारे लिए अब समय आ गया है कि हालेलुया गान गाएं या कम से कम उसका उच्चारण करें। हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत और महान परमेश्वर है। भजन संहिता 11 उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। ध्यान दीजिए, यहोवा धर्मी को परखता है। परमेश्वर जानता है कि उसके अपने कौन हैं। वह अपनी संतान को परखता है, वह मुझे परखता है और आपको भी परख रहा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपसे घृणा करता है, वह हमें हमारी भलाई और उसकी महिमा के निमित्त परखता है ताकि हम उससे और अधिक जाने और अधिक प्रेम करें और विश्वास में बढ़ते जाएं। परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। यदि आप उसे ऐसा वैसा समझें तो उचित होगा कि आप इस भजन को और यही नहीं अन्य भजनों को भी पढ़ें। परमेश्वर दुष्टता करते रहने वालों से घृणा करता है। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर शैतान से प्रेम रखता है। मेरे विचार में तो परमेश्वर उससे घृणा करता है और उससे भी घृणा करता है जो उसे स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते हैं। स्पष्ट कहूं तो मुझे यह एक उक्ति कदापि स्वीकार्य नहीं है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परंतु यदि आप पाप में बने रहेंगे तो आप परमेश्वर के बैरी हैं और परमेश्वर आपका बैरी है। परमेश्वर निस्संदेह आपका उद्धार करना चाहता है और यदि आप अपने अपराधों से मन फिराकर उसके पास आ जाएं तो वह आपका उद्धार करेगा। हम भजन संहिता 11 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हमारे आज के युग में अपराध का कटोरा भर रहा है और परमेश्वर भी उसे भरने दे रहा है। वह उसमें बाधा नहीं डाल रहा है, दुष्ट फल रहे हैं। परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है और सच तो यह है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधर्मियों पर सबसे अधिक मेह बरसता है। आज समय उनका है। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 11 उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर धर्मी से प्रेम रखता है। संकट के समय जब नींवें ढा दी जाती हैं, तब हमें पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग की ओर आंखें उठाना है। धर्मी उसके चेहरे को देखेंगे, यह कैसा अद्भुत दृश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम भजन 12 अध्याय से देखेंगे। विषय है महाक्लेश की अभक्ति के मध्य धर्मी जन। भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में यह भजन पिछले भजनों के सदृश्य है। इसकी पूर्ति तब होगी जब महाक्लेश के समय इसराइल के बचे भक्तों पर कष्ट आएंगे। आरंभिक पदों में उस समय के अधर्म का वर्णन है। इसराइल में वरन कलीसिया में भी अभक्ति बढ़ेगी। तो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 12 उसका 1 पद, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आज इलिया की मनोवृत्ति का विकास करके कहना आसान है, केवल मैं ही बचा हूं, केवल मैं ही हूं जो परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। मित्रों, आज अनेक इस मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं, यह उचित नहीं, परंतु सर्वत्र अभक्ति देखकर ऐसा होना स्वाभाविक है। भजन संहिता 12 उसके 2 पद में लिखा है, उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के ओंठों से दो रंगी बातें करते हैं। आज के युग में विश्वासियों को सच कहना होगा, अर्थात मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ और कहना उचित नहीं है। यह दो धारी बात है, यह दोगलापन की बात है। भजन संहिता 12 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, प्रभु सब चापलूस होठों और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। इस भजन में भजनकार अभिमानी का तिरस्कार करता है। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारी कलीसियाएं ऐसे अभिमान के लिए जानी जाती हैं। यहूदा ने इस अभिमान की भविष्यवाणी की थी, जिसे हम यहूदा 16 पद में देखते हैं, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। दूसरे शब्दों में अभक्त जन झूठों का समूह है। अब परमेश्वर के भक्तों के बारे में देखें। भजन संहिता 12 उसके 5 पद में लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। एक बार एक बड़े भेड़िये ने फूंक मारी तो दो कुत्ते के बच्चे उड़ गए और खो गए, परंतु तीसरा बच्चा घर में था जो भेड़िये की पूंछ से नहीं हिला। यह कहानी दाऊद के वचनों का उदाहरण है। परमेश्वर कहता है कि उसे मैं चैन विश्राम दूंगा, मैं उसे चट्टान की दरारों में छिपा दूंगा, मैं उसे सुरक्षित स्थान में रखूंगा। भजन संहिता 12 उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। दुष्ट अभिमान से पूर्ण होता है और चापलूसी करता है। आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन शुद्ध है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन में अधिक समय देना है। यह एक गढ़ है जिसमें परमेश्वर हमें रखना चाहता है ताकि हम सुरक्षित रहें। भजन संहिता 12 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम ऐसे ही युग में वास कर रहे हैं या रहते हैं, और महाक्लेश के युग में यह विशेष करके सच सिद्ध होगा। देखिए यशाया क्या कहता है, यशाया के पुस्तक 66 अध्याय उसके 5 पद में, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। मेरे मित्रों, यह मेरे विचार में अंत समय में होने वाली यरूशलेम के मंदिर की आराधना का अति उत्तम चित्रण है। यीशु को पकड़ने जब उसके विरोधी आए थे तब उसने कहा, लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 53 पद में, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यहाँ पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि हम जो इस संसार में जीते हैं, संसार में चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। हम कभी भी अच्छी चीजों को नहीं देख पाते हैं। जिस किसी से भी हम बातचीत करते हैं या आप बातचीत करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके मन में कुछ न कुछ अंधकार की बातें हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में स्वार्थ है, वह आपसे कुछ पाना चाहता है, वह आपसे कुछ पाना चाहती है ताकि अंधकार का जीवन उससे स्पष्ट हो जाए। कहने का अर्थ यह भी है कि कोई भी मनुष्य इस संसार में सिद्धता की जीवन नहीं जीना चाहता या नहीं जी पा रहा है। हमारे जीवन में ऐसा ही समय आता है जब बैरी अर्थात दुश्मन का पलड़ा भारी पड़ता है। इस संसार में शैतान हमारा शत्रु है जो हमारे ऊपर में अधिकार रखता है। जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते वह उसे करवाता है, और यही कारण है कि आज जब हम टीवी में समाचारों को देखते हैं और समाचार पत्रों में जब पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, चारों तरफ हमें हत्या, चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन्हीं बातों को सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है। जहां कहीं भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको यही सारी बातें सुनने को मिलती है। इसका कारण यही है क्योंकि हम अंधकार में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में उन लोगों से कह दिया जो उसे पकड़ने के लिए आए थे कि यह घड़ी, यह तुम्हारा समय है, तुम जैसा करना चाहते हो कर लो, बाकी के समय के बारे में कुछ नहीं कहते। आज इस समय जब हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे लिए भी यही बात लागू होती है कि हम इस संसार में अंधकार में हैं, और इस अंधकार में रहते हुए हमें प्रभु की निकटता में आना है। कई लोग जो अपने आप को धर्मी कहते हैं वे भी इस बात से चूक जाते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, परंतु मैं इस बात को जानता हूं कि भजनकार इस भजन के द्वारा हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि एक समय है जब परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें लज्जित होने नहीं देगा, अर्थात ऐसे कठिन परिस्थिति में हम उसकी ओर निहारें, उससे सहायता मांगे और निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार से एक बच्चा जब किसी मेले में खो जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति के हाथ पकड़कर कहीं भी नहीं चला जाता है, परंतु वह अपने पिता को ढूंढता है। उस पिता की कोमलता को वह जानता है और वह जब उसे पकड़ लेता है तो उसे आशा और संतोष प्राप्त होता है। जी हाँ, आज मुझे और आपको भी अपने पिता का हाथ पकड़ना है, ताकि हम इस बात को महसूस कर सकें कि वह हमारे साथ में है, वह हमारी सुरक्षा कर सकता है और कर रहा है। मेरे प्रिय मित्र, आइए आज हम अपने जीवन को इस वचन के प्रकाशन में जांच करके देखें कि हम किसकी ओर अपनी नजरों को उठाते हैं। क्या उन लोगों की ओर जो भ्रष्टाचार में अपने जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार और चोरी में उलझे हुए हैं, गंदे कामों में फंसे हुए हैं, क्या हम उनकी ओर निहारते हैं? क्या हम उनसे आश लगाते हैं, या उस सच्चे परमेश्वर की ओर लगाते हैं जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है? आइए आज हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर अपनों को कुछ भी हानि नहीं होने देगा जब तक कि उनके मन और जीवन में उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है पिताजी, आज के इस वचन के प्रकाशन में जिस प्रकार से आपने हमें इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि किस प्रकार आप हम सबकी चिंता करते हैं, इस अंधकारमय संसार में आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप प्रत्येक की सहायता करें, आप मेरी सहायता करें, हम सब की सहायता करें, ताकि हम निरंतर आप में बढ़ने पाएं। भजनकार की तरह हमें भी प्रभु आपकी निकटता में आने में सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चय ही परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे और उसको महिमा देंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे चाहिए सहारा।